एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, श्रोताओं का स्वागत है एक और ज्ञान गोष्ठी में। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो बहुत बड़ी है, सिर्फ पन्नों में नहीं बल्कि अपने सवालों और अपनी पहुंच में भी।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं जिल लेपोर की लिखी किताब दीज ट्रूथ्स, अ हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये कोई मतलब मामूली इतिहास की किताब नहीं है, ये अमेरिकी कहानी को उसके वादों और उसकी हकीकत के तराजू पर तौलती है, कोलंबस से लेकर आज के दौर तक।
और ये आज इतनी जरूरी क्यों लगती है? शायद इसलिए कि आज हम दुनिया भर में और खासकर अमेरिका में सच और झूठ की बहस देखते हैं, है ना? गहरे राजनीतिक बंटवारे और सच्चाई के मायने पर ही सवाल उठ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम वो एक साझा जमीन खोते जा रहे हैं।
हाँ, और लेपोर यही बुनियादी सवाल उठाती हैं, क्या कोई देश जो कुछ महान सत्यों जैसे बराबरी, अधिकार, जनता का राज पर बना होने का दावा करता है, क्या वो कभी इन ऊंचे आदर्शों पर सच में खरा उतर पाया है? ये किताब इसी कश्मकश की कहानी है, एक संघर्ष जो आज भी जारी है।
हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ अतीत का ब्यौरा नहीं, ये आज के लिए एक आईना है।
सही कहा।
तो चलिए पहले इस आईने को दिखाने वाली लेखिका जिल लेपोर के बारे में थोड़ी बात करते हैं।
वो सिर्फ एक इतिहासकार नहीं है?
नहीं बिल्कुल नहीं, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अमेरिकी इतिहास की प्रोफेसर हैं, लेकिन साथ ही द न्यूयॉर्कर जैसी मशहूर मैगजीन के लिए भी लिखती हैं। ये कमाल का संगम है, अकेडमिक गहराई भी और क्या कहते हैं, आम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का हुनर भी। वो एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं जिनकी आवाज सुनी जाती है।
उनकी खासियत ये है कि वो इतिहास के अनदेखे कोनों में झांकती हैं और बताती हैं कि आज की उलझने कल की अधूरी कहानियों से कैसे जुड़ी हैं। वो मुश्किल बातों को भी दिलचस्प अंदाज में पेश कर सकती हैं। बिल्कुल, वो इतिहास को सिर्फ गुजरी हुई घटनाओं का लेखा जोखा नहीं मानती, बल्कि एक लगातार चलने वाली बहस, एक पड़ताल मानती हैं। और यही नजरिया दीज ट्रूथ्स को खास बनाता है। वो पाठक को सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम इतिहास से क्या सीखते हैं और कैसे सीखते हैं।
तो आते हैं किताब पर, दीज ट्रूथ्स। इसका कैनवस बहुत बड़ा है, 1492 में कोलंबस के आने से लेकर कहां तक, 2016 के अमेरिकी चुनाव तक।
हाँ, लगभग 500 साल का इतिहास।
बाप रे।
लेकिन ये सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं है जैसा आपने कहा। लेपोर का मुख्य तर्क ये है कि अमरीकी इतिहास को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे उसके बुनियादी सत्यों, राजनीतिक बराबरी, कुदरती अधिकार और लोगों की हुकूमत पर एक लगातार चलने वाली, कभी तीखी कभी हिंसक बहस के तौर पर देखना।
और किताब का नाम ही कितना दिलचस्प है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा से लिया गया, वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट, यानी हम इन सत्यों को स्वस्पष्ट मानते हैं। लेपोर कहती हैं कि ये सत्य कभी भी स्वस्पष्ट यानी बिल्कुल साफ और बिना सवाल के माने जाने वाले नहीं रहे।
बिल्कुल, हमेशा इन पर सवाल उठे, झगड़े हुए, अलग अलग मतलब निकाले गए। किताब इसी बुनियादी विरोधाभास को बार बार सामने लाती है। एक देश जो आज़ादी और बराबरी के महान विचारों पर बना, लेकिन जिसने सदियों तक गुलामी और मूल निवासियों के दमन को भी पाला पोसा।
हाँ, ये टकराव अमेरिकी कहानी के हर पन्ने पर मौजूद है,
हर पन्ने पर।
लेपोर सिर्फ राजनीतिक इतिहास नहीं लिखती, वो बताती हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी, छपाई मशीन से लेकर इंटरनेट तक, ने सच को समझा, बदला और फैलाया, कैसे संस्कृति, कानून और राजनीति एक दूसरे से गुथे हुए हैं। ये किताब अकादमिक होने के साथ साथ आम नागरिक के लिए भी है, है ना?
हाँ बिल्कुल, जो अपने देश की कहानी और आज के हालात को समझना चाहता है उसके लिए। किताब को चार बड़े हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है विचार, द आइडिया, जो 1492 से 1799 तक के समय को देखता है, यानी अमेरिका की नींव रखे जाने का दौर।
इसमें लेपोर बताती हैं कि कैसे यूरोपियन लोगों का आना और बसना शुरू हुआ और इसका वहां पहले से रह रहे मूल निवासियों पर कितना भयानक असर पड़ा। वो कहती हैं कि अमेरिका का ख्याल ही इस टकराव और हिंसा से पैदा हुआ, साथ ही इसी दौर में आज़ादी, अधिकार और अपना शासन खुद चलाने जैसे विचार भी पनप रहे थे।
और फिर आता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और आज़ादी का ऐलान। लेपोर यहाँ थॉमस जेफरसन के गहरे विरोधाभास को उजागर करती हैं। वो इंसान जिसने लिखा कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं, वो खुद कई सौ गुलामों का मालिक था।
यही तो, लेपोर के मुताबिक ये विरोधाभास अमेरिका की नींव में ही पड़ा था।
हाँ बिल्कुल।
फिर संविधान बना, यहां भी गुलामी जैसे मुद्दे पर गहरे समझौते हुए, जिसने आने वाले वक्त में बड़े टकराव की जमीन तैयार कर दी। तो इस पहले भाग का निचोड़ यह है कि देश की शुरुआत ऊंचे आदर्शों और गहरे विरोधाभासों के साथ हुई।
सही कहा। दूसरा भाग है लोग, द पीपल, जो 1800 से 1865 यानी गृह युद्ध सिविल वॉर के खत्म होने तक का है। यहाँ मुख्य सवाल है, संविधान में लिखे हम लोग में असल में कौन शामिल है और कौन नहीं?
हाँ, ये बड़ा सवाल है। इस दौर में हम देखते हैं कि गोरे मर्दों को वोट देने का हक तो मिलता है, लेकिन साथ ही मूल अमेरिकी लोगों को उनकी जमीनों से जबरदस्ती हटाया जाता है, जिसे इंडियन रिमूवल कहा गया। एक तरह का जातीय सफाया ही था वो। ये दिखाता है कि लोक की परिभाषा कितनी सीमित थी।
और उत्तर और दक्षिण के बीच खाई गहरी होती जाती है। उत्तर में कारखाने लग रहे हैं, गुलामी नहीं है। दक्षिण खेती पर निर्भर है और मतलब पूरी तरह गुलामी के सहारे टिका है। इसी माहौल में बड़े सामाजिक आंदोलन भी खड़े होते हैं।
हाँ, जैसे गुलामी खत्म करने के लिए एबोलिशनिस्ट आंदोलन, जिसमें विलियम लॉयड गैरिसन और फ्रेडरिक डगलस जैसे नेता थे, और महिलाओं के अधिकारों का आंदोलन, जिसकी एक अहम शुरुआत सेनेका फॉल्स कन्वेंशन 1848 से हुई, जहां औरतों ने बराबरी की मांग उठाई।
लेपोर ये भी बताती हैं कि कैसे उस जमाने की टेक्नोलॉजी, खासकर तेजी से छपने वाले अखबारों ने इन बहसों को दूर दूर तक फैलाया और हवा दी। आखिरकार ये बहसें गृह युद्ध में बदल जाती हैं। लेपोर इसे देश की नींव में पड़े विरोधाभास का हिंसक समाधान मानती हैं।
अब्राहम लिंकन का गेटिसबर्ग भाषण इसी वक्त आता है जो देश को बराबरी के सिद्धांत पर फिर से खड़ा करने की बात करता है।
सही।
तीसरा भाग है राज्य, द स्टेट, जो 1866 से 1945 तक जाता है, यानी गृह युद्ध के बाद से दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक। इस दौर में केंद्र सरकार की ताकत बहुत बढ़ जाती है।
शुरुआत होती है रिकंस्ट्रक्शन से, यानी गृह युद्ध के बाद दक्षिण को दोबारा देश में शामिल करने और आजाद हुए अफ्रीकी अमेरिकियों को अधिकार दिलाने की कोशिश। लेकिन ये कोशिश काफी हद तक नाकाम रहती है। क्यों? क्योंकि जमीनी स्तर पर नस्लीय नफरत और वो पुरानी सोच बहुत गहरी थी।
हाँ, और जल्द ही दक्षिण में जिम क्रो कानून आ जाते हैं, जो नस्ल के आधार पर अलगाव को कानूनी जामा पहनाते हैं। बहुत दुखद।
बहुत दुखद। फिर आता है गिल्डेड एज, यानी ऊपरी चमक दमक का दौर, जब उद्योग तेजी से बढ़े, लेकिन साथ ही अमीर और गरीब के बीच खाई भी बहुत बढ़ गई। बड़े बड़े कॉरपोरेशंस ताकतवर हो गए। इसके जवाब में प्रोग्रेसिव मूवमेंट खड़ा हुआ, जिसने सरकार से दखल देने की मांग की।
हाँ, कंपनियों पर लगाम लगाना, मजदूरों के हालात सुधारना, ये सब मुद्दे थे।
बिल्कुल। इसी दौर में अमेरिका दुनिया में एक बड़ी ताकत बनकर उभरता है। पहला विश्व युद्ध, फिर भयानक आर्थिक मंदी ग्रेट डिप्रेशन, और फिर राष्ट्रपति रूजवेल्ट का न्यू डील। ये सरकारी कार्यक्रमों का एक बड़ा पैकेज था, जिसने लाखों लोगों को राहत दी और सरकार की भूमिका को हमेशा के लिए बदल दिया।
हाँ, सरकार अब लोगों की आर्थिक भलाई के लिए भी जिम्मेदार मानी जाने लगी।
सही। दूसरा विश्व युद्ध अमेरिका को सुपर पावर बना देता है और सरकार की ताकत और बढ़ जाती है।
और किताब का चौथा और आखिरी हिस्सा है मशीन, 1946 से 2016 तक। यहाँ मशीन के कई मतलब हैं। एक तो शीत युद्ध की विशाल फौजी मशीनरी।
हाँ, और फिर मास मीडिया और डेटा की मशीन है।
शीत युद्ध के दौर में देश के अंदर कम्युनिस्ट होने के शक में लोगों पर जुल्म हुए, जिसे मकार्थियज्म कहते हैं। ये डर की मशीन थी, है ना?
बिल्कुल। फिर आता है नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट, जिसने कानूनी बराबरी की लड़ाई जीती, लेकिन इसके खिलाफ जबरदस्त प्रतिक्रिया भी हुई।
नई टेक्नोलॉजी ने राजनीति के सच को ही बदल दिया। ओपिनियन पोल, पीआर यानी जनसंपर्क के तरीके, और खासकर टेलीविजन ने नेताओं के चुनाव लड़ने और लोगों तक पहुंचने का तरीका बदल दिया। अब पार्टी संगठन से ज्यादा जरूरी हो गया कि मीडिया में कैसा दिखते हैं।
बिल्कुल। प्रदर्शन की राजनीति शुरू हुई। फिर 1960 के दशक का भारी उथल पुथल, वियतनाम युद्ध का जख्म, वाटरगेट स्कैंडल, जिसने सरकार पर भरोसे को बुरी तरह तोड़ा। इसके बाद न्यू राइट यानी नई दक्षिणपंथी लहर आती है, जो सरकारी दखल को कम करना चाहती है।
और आखिर में आता है डिजिटल युग, इंटरनेट, सोशल मीडिया। लेपोर का मानना है कि इसने लोगों को और ज्यादा बांटा है, संस्थानों पर भरोसा कम किया है और गलत सूचना, मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाना आसान बना दिया है। 2016 का चुनाव लेपोर के लिए इन सारी लंबी चली आ रही प्रवृत्तियों का नतीजा था।
हाँ, जहाँ ऐसा लगा कि सच के कई टुकड़े हो गए हैं, कोई एक साझा हकीकत बची ही नहीं।
तो इस पूरी कहानी से
कुछ बड़े सबक या मुख्य विषय उभरते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे गहरा है अमेरिका का वो स्थायी विरोधाभास, आज़ादी और गुलामी का।
हाँ, बराबरी और गैर बराबरी का। लेपोर बार बार दिखाती है कि ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये आज भी अमेरिका की पहचान का हिस्सा है जो नस्लीय तनाव और राजनीतिक बंटवारे में झलकता है।
ये एक ऐसी फांस है जो अब तक चुभ रही है।
बिल्कुल। दूसरा, इतिहास कोई सीधी लकीर नहीं है जिसमें सब कुछ बेहतर ही होता जाता है। ये एक लगातार चलने वाली बहस है अपने आदर्शों के मतलब पर, अपने वादों पर।
हाँ, इसमें उतार भी हैं, चढ़ाव भी हैं, जीत भी है, हार भी है।
और तीसरा, हम लोग की परिभाषा का लगातार बदलना। नागरिक कौन है, देश किसका है, हाशिए पर रखे गए समूहों, गुलामों, औरतों, अप्रवासियों, मूल निवासियों का बराबरी और अपनेपन के लिए लंबा संघर्ष इस कहानी का दिल है।
लेकिन ये लड़ाई भी सीधी नहीं रही है ना?
कभी अधिकार मिले, कभी छीने।
हाँ, बिल्कुल।
चौथा, टेक्नोलॉजी का राजनीति और सच पर असर। कैसे छपाई मशीन से लेकर ट्विटर तक हर नई तकनीक ने लोकतंत्र को बदला है, कभी अच्छे के लिए, कभी बुरे के लिए।
हम आज भारत में भी देखते हैं कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया हमारी राजनीति और समाज पर कैसा असर डाल रहे हैं। ये बहुत प्रासंगिक है।
बहुत ज्यादा। पांचवा, सरकार की भूमिका पर लगातार चलने वाली बहस। सरकार कितनी बड़ी हो, उसे क्या करना चाहिए, निजी आज़ादी और समाज की भलाई में संतुलन कैसे हो।
हाँ, ये सवाल अमेरिका में हमेशा से बहस का मुद्दा रहे।
और छठा, जो लेपोर के लिए शायद सबसे ज़रूरी है, सबूत, तथ्य और खुली जांच का महत्व। वो कहती हैं कि लोकतंत्र तभी टिक सकता है जब बहस तथ्यों पर आधारित हो। जब सच सिर्फ निजी राय बनकर रह जाए तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेपोर की किताब में कई ऐसी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। चलिए कुछ खास विचारों पर गौर करते हैं। पहला, अमरीकी प्रयोग हमेशा से सबूतों, तथ्यों और आस्था, रहस्यों के बीच एक कश्मकश रहा है। एक देश जो सत्यों पर बना, वो हमेशा ये खोजता रहा कि सच आखिर है क्या।
इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि सच को जानने और मानने के तरीकों पर भी लड़ाई अमरीकी इतिहास का हिस्सा रही है। ज्ञान क्या है, इस पर ही सहमति बनाना मुश्किल रहा है।
हाँ, बिल्कुल। दूसरा, संविधान ने आज़ादी और गुलामी के विरोधाभास को सुलझाया नहीं, बल्कि उसे देश के बुनियादी कानून में ही जगह दे दी, जिसने गृह युद्ध की जमीन तैयार की।
ये बहुत अहम नुक्ता है। यानी गुलामी कोई छोटी मोटी भूल नहीं थी जिसे बाद में सुधार लिया जाता। ये सिस्टम का हिस्सा थी जिसे संविधान ने सहारा दिया, और इसी वजह से गृह युद्ध लगभग तय हो गया था।
तीसरा, प्रसारण की एक नई राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ ब्रॉडकास्ट, ने पार्टी की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ पार्टी की जगह ले ली। राजनीतिक ताकत पार्टी नेताओं के हाथ से निकलकर मीडिया सलाहकारों और पोल करने वालों के हाथ में चली गई।
ये 20वीं सदी के मध्य में टीवी और ओपिनियन पोल के आने से हुए बदलाव की बात है। अब नेता कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, यह ज्यादा मायने रखने लगा। राजनीति एक तरह का परफॉर्मेंस बन गई।
सही का। और चौथा, 21वीं सदी में राय बनाने की मशीनरी अब सबके हाथों में है। नतीजा, ज्यादा जानकार नागरिक नहीं बल्कि ज्यादा बटे हुए नागरिक था। लोग लड़ते हुए कबीलों में बढ़ गए।
ये सीधी चोट है इंटरनेट और सोशल मीडिया के असर पर। उम्मीद थी कि इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, लोग ज्यादा जानेंगे, लेकिन हे लेपोर कहती हैं कि हुआ उल्टा। लोग अपने अपने खोल में बंद हो गए, नफरत बढ़ी और समाज और ज्यादा बट गया। ये आज की कड़वी हकीकत है।
बिल्कुल। तो ये सब जानने के बाद सवाल उठता है कि हम इस इतिहास से आज क्या सीख सकते हैं, इसका हमारी जिंदगी में क्या मतलब है।
पहली बात तो ये कि आज के मुश्किल राजनीतिक मुद्दे, वोट देने का अधिकार हो, बराबरी का सवाल हो, सरकार की भूमिका हो, ये सब हवा में से पैदा नहीं हुए हैं। ये अमेरिका की पुरानी अनसुलझी बहसों की ही गूंज है। इतिहास को जानने से हमें आज को समझने का एक नजरिया मिलता है।
दूसरी अहम सीख है मीडिया लिटरेसी, यानी मीडिया को समझने की साक्षरता। ये जानना कि खबर हम तक कैसे पहुंच रही है, उसे कौन और कैसे पेश कर रहा है, चाहे वो अखबार हो, टीवी हो या फोन पर आया मैसेज। सवाल पूछना जरूरी है।
हाँ, बहुत जरूरी। तीसरा, नागरिक संवाद की अहमियत। लेपोर जोर देते हैं कि लोकतंत्र में असहमति तो होगी, लेकिन वो तथ्यों और सबूतों पर आधारित होनी चाहिए। जब हम बुनियादी तथ्यों पर ही सहमत ना हों तो बातचीत कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है।
सही बात है। और शायद एक और बात, अपने देश को देखने का एक ज्यादा संतुलित नजरिया। اس کی کامیابیوں کو ماننا لیکن اس کی کمیوں اور ورودھاباسوں سے آنکھیں نہ چرانا۔ مشکل سوالوں کا سامنا کرنا ہی شاید سچی دیش بھکتی ہو سکتی ہے۔
ہاں، اور یہ کتاب آج کے گہرے راجنیتک دھرویکرن کو سمجھنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ یہ راتوں رات نہیں ہوا، اس کی جڑیں گہری ہیں اور ٹیکنالوجی نے اسے اور ہوا دی ہے۔ اسے سمجھ کر شاید ہم سمادھان کی طرف بڑھ سکیں۔
اس پوری چرچا سے میرے لیے جو سب سے بڑی بات نکل کر آئی ہے وہ یہ ہے کہ لوکتنتر چاہے امریکہ کا ہو یا کہیں اور کا، یہ کوئی پکی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ ایک نازک پودا ہے جسے لگاتار سینچنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ناگرکوں کی سکری سوچی سمجھی بھاگیداری ضروری ہے، اسے ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا۔
میرے لیے تین باتیں خاص ہیں۔ پہلی، آزادی اور غلامی کا وہ پرانا ورودھاباس آج بھی کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہے اور اسے سمجھنا ضروری ہے۔ دوسری، لوکتنتر کے لیے تتھیوں پر آدھارت ایک ساجھا سمجھ کا ہونا کتنا ضروری ہے، جب وہ ٹوٹتی ہے تو سب کچھ بکھرنے لگتا ہے۔ اور تیسری، اتہاس صرف گزری ہوئی کہانیاں نہیں ہے، یہ آج کو سمجھنے اور کل کو بہتر بنانے کا اوزار ہے۔ جل لیپور کی دیز ٹروتھ ہمیں یہی دکھاتی ہیں۔
ملیں گے اگلے انک میں ایک اور وشو پرسدھ ویکتتو، ایک اور کتاب اور ایک ایسے نئے وچار کے ساتھ جو ہماری دنیا کو آکار دیتا ہے۔ یہ آڈیو سارانش آپ کے لیے ایکتر فاؤنڈیشن دوارا پرستت ہے۔